नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका देश भारत का सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, प्रतिभाओं की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और भारत इसे पूरा करने में सक्षम है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक गुजरात और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी, सेपक टकराव और निशानेबाजी में कई पदक दांव पर। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्चस्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। इसी कड़ी में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी श्री मोदी से मिले थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ प्रधानमंत्री की अलग अलग बैठकें हुई हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को परखना है।
कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा, साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे।
7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है और कल की मॉक ड्रिल में भी कैडेट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
इस बीच कल होने वाली इस ड्रिल से पहले दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर कल के अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कल होने वाले ड्रिल से पहले आज तैयारियां की जा रही हैं। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अमरीका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा है कि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लिए समर्थन दोहराया है। अमरीकी कांग्रेस के वक्तव्य में कल श्री जॉनसन ने भारत को अमरीका का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक क्लोज डोर सत्र के दौरान पाकिस्तान पर प्रश्न उठाया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों के अनुसार परिषद के कई सदस्यों ने पाकिस्तान की आलोचना की और इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा की भूमिका को लेकर चिंताएं व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने स्थिति को काफी तनावपूर्ण बताया है। इससे पहले श्री गुतरश ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और इस हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसान पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच फसल की कटाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि जम्मू, सांबा और कठुआ के 3 जिलों में करीब 1,25,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पाकिस्तान से सटे इलाके में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि प्रतिभा की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और भारत इसे पूरा करने में सक्षम है। नई दिल्ली में आज ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया गति का शुभारंभ करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक कार्यस्थल और कार्यबल के उभरने तथा विश्वास और लचीलेपन के कारण विदेशों में अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकीय बदलावों, नई प्रौद्योगिकी की मांग, सांस्कृतिक और कार्य नैतिकता की अनुकूलता से प्रेरित है। डॉ जयशंकर ने कहा कि अवसरों की मात्रा इतनी बड़ी है कि इसे पूरी तरह से साकार करने के लिए पूरे देश के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
My short point is that there is a demand in the world, an availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what will be the scale, I think that is up to us.
डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं में पिछले कुछ वर्षों में कामकाजी भारतीयों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरिटा 8 मई से न्यूजीलैंड और फिजी की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे ऑकलैंड में राजनीतिक नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक और व्यावसायिक समुदायों के प्रमुख उद्योगपतियों तथा भारतीय मूल के सदस्यों से बातचीत करेंगे। फिजी में श्री मार्गरिटा सम्मानित अतिथि के रूप में तीसरे गिरमिट दिवस समारोह में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विदेश में बनी फिल्मों पर अमरीका द्वारा शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है। नवनिर्वाचित लेबर पार्टी सरकार में सामाजिक सेवा मंत्री अमांडा रिश्वर्थ ने आज कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सहित सभी सदस्य नए शुल्क लगाए जाने के विरोध में अमरीका के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्मार्टफोन अब सिर्फ संचार का माध्यम न होकर विश्व की सूचना का प्रवेश द्वार और सशक्तिकरण का माध्यम बन चुका है। नई दिल्ली में आज 22वें भारत टेलीकॉम 2025 के उद्घाटन समारोह में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभर चुका है। एक रिपोर्ट।
श्री सिंधिया ने कहा कि देश में 1,20,00,000,000 मोबाइल उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या एक दशक पहले के 60 मिलियन उपयोगकर्ताओं से बढ़कर आज 950 मिलियन से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 970 मिलियन हो गई है। भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में सम्मेलन सत्र, प्रदर्शनी और बिजनेस टू बिजनेस बैठकें होंगी। इसमें भारत के अग्रणी टेलीकॉम विनिर्माता और सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस प्रदाता अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
देश का सकल घरेलू उत्पाद 4,187 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाने के कारण भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये जापान के 4,186 बिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद को पार कर जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुजरात के अहमदाबाद में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। आरोपी सलीम जुम्मा खान पठान एंड एसोसिएट्स समूह पर कथित तौर पर वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में पेश होकर अवैध रूप से संपत्तियों से किराया वसूलने का आरोप है। अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली पुलिस द्वारा एक एफआईआर के बाद ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना पर सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में जाति जनगणना पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने श्री खड़गे की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि ये पत्र निर्णय लेने का श्रेय लेने की हताशा में लिखा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना को लेकर सरकार की घोषणा के बाद कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने इस निर्णय की घोषणा करने का साहस दिखाया है, जबकि उनसे पहले के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय नहीं लिया।
हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता जातिगत जनगणना कोई आज से नहीं है, और जितने भी श्रेय लेने वाले लोग आज घूम रहे हैं, वो चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, UPA 2 में तो इनकी भारी भरकम सरकार थी, क्यों नहीं किया तब? असल मंशा यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को सत्ता देना चाहते हैं। हम लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्प को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को इस निर्णय के माध्यम से पूरा किया है।
पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह नगर में टिब्बा नांगल कुलार रोड के पास एक वन क्षेत्र से हथियार बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक गुजरात और राजस्थान में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी गरज और बिजली के साथ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जेनामणि ने कहा कि अगले 7 दिन तक दिल्ली और देश के अन्य उत्तर पश्चिमी भागों में लू की स्थिति नहीं होगी।
गुजरात का क्षेत्र है, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र का गुजरात रीजन, तो हैवी रेन का संभावना है। उसके साथ साथ डॉस्टर्म थंडरस्टर्म काल हुआ था, आज भी मेनली थंडरस्टर्म का और स्ट्रांग विंड चलने का संभावना है। नेक्स्ट 3 डेज तक जो गुजरात में हम लोग ऑरेंज वार्निंग दिया है, उसी के आसपास का जो दक्षिण राजस्थान का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे वेदर होगा, थंडरस्टर्म लाइटनिंग और हैवी रेन भी हो सकता है।
बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज तीसरे दिन तैराकी, जूडो, सेपक टाकरा और निशानेबाजी में 70 से अधिक पदक दांव पर होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजगीर खेल परिसर में कबड्डी के आज रोचक मुकाबले देखने को मिले। गर्ल्स कैटेगरी में हरियाणा की टीम ने पूल ए के एक मैच में छत्तीसगढ़ को पराजित किया। वहीं हरियाणा के बालक वर्ग की टीम ने पूल ए के मुकाबले में आंध्र प्रदेश को पराजित कर अपना कबड्डी में विजय अभियान जारी रखा। पूल बी के मुकाबले में बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार की कबड्डी टीमों को आज पराजय का मुख देखना पड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन आज तैराकी, जूडो, सेपक टाकरा और निशानेबाजी में 70 से अधिक पदकों का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
खेल के तीसरे दिन आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। लड़कियों की 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं बिहार की सुहानी कुमारी ने रजत और महाराष्ट्र की आकांक्षा महत्रे ने कांस्य पदक हासिल किया। नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला युवा वर्ग में प्राची शशिकांत गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण में राष्ट्रीय राजधानी में निशानेबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस वर्ष की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस सौंदर्य प्रतियोगिता को 10 से 31 मई तक हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आयोजन न केवल तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाएगा, बल्कि इससे विश्व मंच पर तेलंगाना की छवि भी बेहतर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विपक्ष की निंदा की है। आकाशवाणी से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि इस त्रासदीपूर्ण घटना पर विपक्ष के कुछ नेता जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं वो निंदनीय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका देश भारत का सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा प्रतिभाओं की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और भारत इसे पूरा करने में सक्षम है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक गुजरात और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।